नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया संघर्ष के दुष्प्रभाव से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए केंद्र से विशेष कृषि पैकेज की मांग की। नालंदा भगदड़ मामले के बाद प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कराने का लिया गया निर्णय। और मौसम विभाग ने कहा, अप्रैल महीने में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान और वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित पहल पर विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति सीसीएस की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ तथा रबी फसलों के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि चल रहे संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद और लघु और मध्यम उद्यमों MSME में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आवश्यक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए LPG और LNG की आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कमी करने और बिजली क्षेत्र से संबंधित उपायों की समीक्षा भी की गई। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में उर्वरक, बीज और कृषि रसायनों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय बैठक में कृषि विभाग के अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं।
जितने भी प्रमुख फसल हैं उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान, जिसका सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है, 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द, इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है। ये बीज की उपलब्धता सभी राज्यों में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है।
अपर सचिव ने कहा कि वर्तमान खरीफ सीजन के लिए पहले से ही 46% उर्वरक उपलब्ध है और कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि टमाटर, प्याज और आलू सहित प्रमुख फसलों की कीमतें स्थिर हैं और थोक स्तर पर इनमें सुधार दिख रहा है। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आओ ने बताया कि विमानन उद्योग ने निर्धारित घरेलू मार्गों पर एयरलाइनों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में नियंत्रित 25% की वृद्धि के सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
इंडियन एविएशन इंडस्ट्री हैज वेलकम।
भारतीय विमानन उद्योग ने सरकार के इस महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय का स्वागत किया है। इसके अंतर्गत घरेलू मार्गों पर चलने वाली नियमित उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में 25% की नियंत्रण वृद्धि की गई है। ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अभूतपूर्व उछाल के बीच राहत प्रदान करता है।
ड्यू टू द डिस्ट्रप्शंस इन वेस्ट एशिया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में 5 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में प्रत्येक क्षेत्र के लिए व्यापक चर्चा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के लिए पहला सम्मेलन 7 अप्रैल को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार समेत विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। श्री चौहान ने बताया कि अब तक 19 राज्यों में 9,25,00,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इधर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्र सरकार से बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए विशेष कृषि पैकेज की मांग की है। श्री यादव ने इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 47,00,000 से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में पत्थर खनन के लिए 30 ब्लॉक की पहचान की गई है। श्री सिन्हा ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गया, नालंदा, कैमूर और बांका समेत कई जिलों में पत्थर खनन स्थलों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार की सहमति और पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के बाद इन स्थानों से खनन कार्य शुरू होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि इस कदम से दूसरे राज्यों से पत्थरों के आयात पर बिहार की निर्भरता कम होगी, साथ ही प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू घाटों का टेंडर सरेंडर करने वाली कंपनियों को अब नए टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने नालंदा भगदड़ मामले के बाद प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने और वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा कि मगड़ा भगदड़ मामले में आरोपितों के खिलाफ एक सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इधर वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले में 5 पुजारियों को गिरफ्तार किया है। इन पुजारियों पर श्रद्धालुओं से पैसे लेकर दर्शन कराने का आरोप लगा है। साथ ही मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत 20 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मगड़ा शीतला मंदिर में भगदड़ के दौरान 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। प्रदेश में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 8 रूपये, कुशल श्रमिकों के लिए 10 और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। संशोधन के बाद अब अकुशल श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़कर 436 रूपये हो गई है। इसी प्रकार अर्ध कुशल श्रमिकों की 452, कुशल की 551 और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 672 रूपये हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है। इसकी शुरुआत 28 जनवरी से हुई थी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक हुआ था, जबकि सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू हुआ, जो आज संपन्न हो रहा है। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और 2026-27 के केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। दूसरे चरण में संसद ने वित्त विधेयक 2026 और विनियोग विधेयक संख्या 2/2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का पक्ष रखा था। लोकसभा ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माना तथा दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने के उपाय शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये विधेयक लोगों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के भरोसे और विश्वास को दर्शाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अप्रैल महीने में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान और वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान के भी अधिक रहने से रात में उमस भरी गर्मी का अनुभव हो सकता है। इस दौरान 3 से 5 दिन तक लू चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 6 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश स्थानों पर एक बार फिर आंधी, बारिश और वज्रपात की स्थितियां बन सकती हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 6 अप्रैल से नई समय सारणी लागू होगी। इसके अनुसार सभी विद्यालयों की कक्षाएं सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:20 तक संचालित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आज देश भर में JEE मेन परीक्षा का आयोजन कर रहा है। पटना सहित राज्य के 11 शहरों में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा में प्रदेश से 73,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी पटना के महावीर मंदिर सहित प्रदेश भर के सभी हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। राजगीर में खेली जा रही 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के पहले दिन मेजबान बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। वहीं दिन के अन्य मुकाबलों में आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा और दिल्ली की टीमों ने जीत दर्ज की है। लखीसराय में आयोजित बिहार राज्य महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में बेगूसराय और कटिहार की टीमों ने जीत दर्ज की। कल खेले गए मुकाबले में बेगूसराय ने नवादा को 5-0 से जबकि कटिहार की टीम ने नालंदा को 2-0 से पराजित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इधर कल लखनऊ में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन को नियमित करने तथा सहरसा लोकमान्य तिलक और सुपौल नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ललित ग्राम तक विस्तार करने की मांग की है। ईरान और अमेरिका इसराइल युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले चीफ इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार भागलपुर के बरारी घाट पर किया गया। वे जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत रानी बमिया गांव के रहने वाले थे। युद्ध क्षेत्र में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर तैनाती के दौरान ड्रोन हमले में उनकी मौत हो गई थी। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज चौक पर देर रात अगलगी की घटना में कई दुकानें जलकर नष्ट हो गयी। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत VTR में एक मगरमच्छ के हमले में बाघ के शावक की मौत हो गयी। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में जलवायु परिवर्तन, 14 जिलों में भूजल स्तर 2.5 फीट तक नीचे गया। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए शीर्षक दिया है मौसम का यू टर्न, आंधी से तबाही, 5 अप्रैल से तूफान का अलर्ट। दैनिक जागरण ने ईरान और इसराइल के बीच जारी गतिरोध से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है बिना डील ईरान युद्ध से निकल सकता है अमेरिका। प्रभात खबर लिखता है निबंधन राजस्व संग्रह में पटना अव्वल, दानापुर रजिस्ट्री ऑफिस रहा टॉप में, दूसरे पर रजौली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया संघर्ष के दुष्प्रभाव से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए केंद्र से विशेष कृषि पैकेज की मांग की। नालंदा भगदड़ मामले के बाद प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कराने का लिया गया निर्णय। और मौसम विभाग ने कहा अप्रैल महीने में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान और वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।